श्रोताओं नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी हमारे साथ आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से यशाया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और इसका मुख्य विषय है मसीह का आगमन और छुटकारा। प्रिय श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। लीजिए, प्रस्तुत है ये बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। विशेष करके मैं अपने उन नए मित्रों का स्वागत करता हूँ जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इन दिनों बाइबल में से यशाया नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और अब तक हमने यशाया की पुस्तक उसके 20 अध्याय तक का अध्ययन किया है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं तो हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, विशेष करके हमारे प्रत्येक श्रोता मित्रों को जो आपके वचन को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने कहा कि हम इन दिनों यशाया की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और अब तक हमने मिस्र के विषय भविष्यवाणी देखी और वह निकट भविष्य में पूरी भी हो गई। दूरस्थ भविष्य में मिस्र प्रभु यीशु के राज्य में इसराइल के साथ आनंद मनाएगा। आज का हम विषय देखेंगे तीन दंड, समुद्र के पास के जंगल, बेबीलोन, दूमा, एदोम और अराबा। यशाया 11 दंडों की भविष्यवाणी करता है। यहां हम सातवां, आठवां और नवां दंड को देखेंगे जो बेबीलोन, एदोम और अराबा के विषय परमेश्वर का भारी वचन है। इन दंडों को प्रभावी चिन्हों द्वारा व्यक्त किया गया है। मेरे विचार में उस समय उसकी बातें श्रोताओं की समझ में ऐसी स्पष्ट थी जैसे दिन में सूर्य। इस अध्याय के चिन्ह आज हमारी समझ में नहीं आएंगे, अतः बाइबल के टीकाकारों में उनके अर्थ निर्धारण के विषय में मतभेद है। वे बेबीलोन, सदोम और अराबा है और इस अध्याय में हम देखेंगे कि वे अलग अलग व्यक्त किए गए हैं। वे सब इसराइल के सामर्थी शत्रु थे। प्रत्येक देश ने इसराइल को एक विशेष कष्ट पहुंचाया था और प्रत्येक को समय आने पर दंड मिला है। यह अध्याय परमेश्वर के वचन का एक बहिष्कृत अंश है। इसके प्रमाण में मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। आपने इस अध्याय पर कब कोई उपदेश या बाइबल अध्ययन सुना है? मेरे विचार में तो आपने यशाया 21 में कभी कोई बाइबल अध्ययन नहीं सुना होगा। यह एक और अध्याय है जो परमेश्वर के वचन के संबंध में मेरी सहस्त्र वर्षीय राज्य से पूर्व, महाक्लेश से पूर्व के युग की व्याख्या को सहयोग देता है। यही एकमात्र व्याख्या है जो ऐसे अंश की संतोषजनक व्याख्या है और यही कारण है कि अन्य सब विचार इस अध्याय से और परमेश्वर के वचन की ऐसी अन्य शिक्षाओं से विलग ही है। मेरे प्रियो, इस अध्याय में ध्यान देना योग्य बात है। इसके चिन्ह जो प्रतीकात्मक रूप में काम में लिए गए हैं, मैं धर्मशास्त्र के शाब्दिक अनुवाद में विश्वास करता हूं, परंतु जब चिन्ह काम में लिए जाएं, तो वे सदा ही चित्र प्रदर्शित सत्य ही होता है। यह स्मरण रखने के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। बहुत से टीकाकार धर्मशास्त्र की किसी शिक्षा को प्रतीकात्मक कहते हैं, जिससे कि वह विलोपी हो जाए। जैसे कि जादूगर आबरा का डाबरा कहकर किसी वस्तु को गायब कर देता है। अतः आप चिंता ना करें मेरे मित्रों, हम धर्मशास्त्र के इस अध्याय को हवा में न उड़ा दें। हम इसे पढ़ करके देखें कि परमेश्वर क्या कहता है। तो आइए आप मेरे साथ यशाया की पुस्तक 21 अध्याय उसके एक पद को निकाल लीजिए, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, समुन्दर के पास के जंगल के विषय भारी वचन, जैसे दक्षिणी प्रचंड बवंडर चला आता है, वैसे ही वह जंगल से अर्थात डरावने देश से निकट आ रहा है। मेरे प्रियो, समुन्दर के पास के जंगल, यह एक विचित्र अभिव्यक्ति है। जैसे कि हम कहें पानी का सूखापन या पानी कितना सूखा है, हमारे लिए यह अभिव्यक्ति विचित्र तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ सूखा बर्फ और ठंडी गर्मी भी है। डॉक्टर F.C. जेनिंग ने इस पद का अनुवाद इस प्रकार से किया है, जिस प्रकार बवंडर दक्षिण में आता है, उसी प्रकार वह रेगिस्तान से आता है, वह देश जहां आतंक है। मेरे प्रियो, यह इस पद का एक अच्छा अनुवाद है, परंतु इसमें देश की पहचान नहीं है। परंतु यदि आप पद 9 तक पढ़ते जाएं, तो वहां उस देश का नाम लिखा है, गिर पड़ा, बेबीलोन गिर पड़ा। इससे हम समझ पाते हैं कि समुन्दर के पास के जंगल बेबीलोन है। इससे पूर्व की बेबीलोन विश्व शक्ति बने, उसके विनाश की भविष्यवाणी की जा चुकी थी। हम यह देख चुके हैं, जिसे हम अध्याय 13 और 14 में पहले दंड की भविष्यवाणी बेबीलोन के संबंध में थी। बेबीलोन इतना अधिक भयानक और बीभत्स था, और धर्मशास्त्र में इसका इतना अधिक उल्लेख है कि इसके विनाश की भविष्यवाणी दूसरी बार आई है। वह परमेश्वर के विरुद्ध संगठित विद्रोह का प्रथम स्थान था, बेबीलोन का गुम्मट। वह परमेश्वर के विरोध विद्रोह का अंतिम गढ़ था। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 17 और 18 में इसका उल्लेख है। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में धार्मिक बेबीलोन का उल्लेख है, और प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 में व्यापारिक बेबीलोन का उल्लेख है। समुद्र के पास के जंगल, यह एक असंगत बात है। बेबीलोन परात नदी के निकट रेगिस्तान में था, उसमें सिंचाई के लिए नदी से नहरें निकाली गई थी। यर्मिया की पुस्तक 51 अध्याय उसके 13 पद में बाबुल का विवरण दिया गया है, हे बहुत जलाशयों के बीच बही हुई और बहुत भंडार रखने वाली, तेरा अंत आ गया, तेरे लोभ की सीमा पहुंच गई है। जी हाँ, रेगिस्तान और समुद्र दो विपरीत बातों का मेल है। प्रकाशित वाक्य में यहुना भी समुद्र और रेगिस्तान की एक साथ चर्चा करता है, जिसे हम 17 अध्याय उसके 3 पद में पढ़ते हैं, तब वह मुझे आत्मा में जंगल में ले गया, और मैंने लाल रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। इस जंगल में यहुना ने बेबीलोन को देखा था। 17 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं, जो बहुत से पानी पर बैठी है। यहुना ने जंगल में बहुत सा पानी देखा था। ये दोनों पद प्रतीकात्मक हैं, परंतु दोनों के प्रतिरूप एक ही हैं। यर्मिया की पुस्तक में भी हम इसी अभिव्यक्ति को देखेंगे। बेबीलोन अपनी चमक दमक, मूर्ति पूजा का प्रमुख और झूठे धर्म के रेगिस्तान की मरीचिका है। क्या यह एक अद्भुत बात नहीं है? समुद्र के पास के जंगल, यह कैसा चित्रण है! बेबीलोन कोई अद्भुत स्थान नहीं था, वह रेगिस्तान की मरीचिका था। यह वह सोता या रेगिस्तान की हरियाली नहीं था, वह मूर्तियों और झूठे धर्म का भंडार था। वहां मनुष्य की आत्मा के लिए जीवन का जल नहीं था। इस बात को प्रत्येक पास्टर, प्रत्येक प्रचारक, प्रत्येक कलीसिया का प्रत्येक सदस्य मन में बसा ले। क्या मेरी कलीसिया या मैं जीवन जल का सोता हूं, या मैं रेगिस्तान में केवल मृग तृष्णा हूं या मरीचिका हूं? यशाया 21 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, कष्ट की बातों का मुझे दर्शन दिखाया गया है, विश्वासघाती विश्वासघात करता है और नाशक नाश करता है। हे इलाम चढ़ाई कर, हे मादे घेर ले, उसका सब कराहना मैं बंद करता हूँ। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर मादी फारसी राज्य को उनके विनाश की आज्ञा देता है। हे इलाम चढ़ाई कर, हे मादे घेर ले। ठीक यही हुआ था। जी हाँ, यह भविष्यवाणी उसके आक्रमण से बहुत पहले की गई है। यशाया 21 अध्याय के 3 और 4 पद में आगे लिखा है, इस कारण मेरी कटी में कठिन पीड़ा है, मुझको मानो जच्चा की सी पीड़ा हो रही है। मैं ऐसे संकट में पड़ गया हूँ कि कुछ सुनाई नहीं देता, मैं ऐसा घबरा गया हूँ कि कुछ दिखाई नहीं देता। मेरा हृदय धड़कता है, मैं अत्यंत भयभीत हूँ। जिस सांझ की मैं बाट जोहता था, उसे उसने मेरी थरथराहट का कारण कर दिया है। एक बार फिर यशाया भावनात्मक हो उठता है, क्योंकि वह विनाश को आते हुए देखता है। यह परमेश्वर का मन है, वह दया दर्शाना चाहता है और दंड से घृणा करता है, चाहे वह कैसा भी भयानक शत्रु हो। परमेश्वर का प्रेम यहां वैसे ही प्रकट हो रहा है जैसे यिर्मयाह के आंसुओं से था। परमेश्वर के दंड से कोई भी प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर कहता है कि उसका दंड विचित्र काम है, वह आपको दंड देना नहीं चाहता है, वह आपको बचाना चाहता है, परंतु चुनाव आपका है। वह तो अन्य जातियों को भी दंड देना नहीं चाहता है, परंतु चुनाव उनका है। मेरे मित्र, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपको दंड देने से प्रसन्न नहीं होता है, वह चाहता है कि आप बच जाएं। यशाया 21 अध्याय के 5 पद में लिखा है, भोजन की तैयारी हो रही है, पहरुए बैठाए जा रहे हैं, खाना पीना हो रहा है, हे हाकिमो उठो ढाल में तेल मलो। इस पद को पढ़ते समय ऐसा लगता है कि बेबीलोन का विनाश आंखों के सामने हो रहा है, जैसा दानियल की पुस्तक अध्याय 5 में दिया गया है। स्मरण रखें कि यह वास्तविक घटना से 200 वर्ष पूर्व की भविष्यवाणी है। बेलशासर का भोज अभी चल ही रहा था कि मादी सेनापति गोर्बियस ने शहर में आने वाली नहर का पानी काटकर सूखी नहर से अपनी सेना भीतर प्रवेश करवा दी। उसने आकस्मिक एवं आश्चर्यजनक प्रवेश किया। परमेश्वर ने तो पहले ही कह दिया था कि ऐसा होगा। तब हम आगे पढ़ते हैं यशाया 21 अध्याय उसके 8 और 9 पद में, और उसने सिंह के से शब्द से पुकारा, हे प्रभु, मैं दिन भर खड़ा पहरा देता रहा और मैंने पूरी रात पहरे पर काटी, और क्या देखता हूं कि सवारों का दल अर्थात दो दो करके सवार चले आ रहे हैं। और वह बोल उठा, गिर पड़ा बेबीलोन, गिर पड़ा, और उसके देवताओं की सब खुदी हुई मूर्तियां भूमि पर चकनाचूर कर डाली गई हैं। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, शहरपनाह पर खड़े पहरुए संदेश देते हैं कि वे रेगिस्तान से एक रथ को आते देखते हैं। वे संदेश वाहक हैं, उनका संदेश है, गिर पड़ा बेबीलोन, गिर पड़ा। पहरुआ बेबीलोन के राजा को संदेश देता है कि उसका नगर गिर पड़ा। यिर्मयाह की पुस्तक 51 अध्याय उसके 31 से 33 पद में परमेश्वर हमें बताता है कि बेबीलोन के पतन का संदेश कैसे पहुंचेगा। बेबीलोन की सब मूर्तियां तोड़कर मिट्टी में मिला दी जाएंगी। यह दुख की आह तो राहत की भी सांस है। बेबीलोन मूर्ति पूजा का एक बड़ा केंद्र था। यशाया के पुस्तक 21 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, हे मेरे दाएं हुए और मेरे खलिहान के अन्न, जो बातें मैंने इसराइल के परमेश्वर सेनाओं के यहोवा से सुनी है उनको मैंने तुम्हें बता दिया है। ध्यान दीजिए, कटनी परमेश्वर के दंड का प्रतीक है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 35 पद में हमारे प्रभु यीशु ने कहा, क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटने के लिए पक चुके हैं। जी हाँ, हमारे प्रभु यीशु ने यह बात व्यवस्था के युग के अंत में कही थी। यह वह समय था जब इसराइल पर दंड आने वाला था। इसराइल के पास व्यवस्था लगभग 1500 वर्षों से थी, अतः कटनी परमेश्वर का दंड का समय था। मेरे मित्रों, अब हम आगे देखेंगे एदोम को दंड। यशाया के पुस्तक 21 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, दूमा के विषय भारी वचन, सेर में से कोई मुझे पुकार रहा है, हे पहरवे रात का क्या समाचार है, हे पहरवे रात की क्या खबर है। अब हम यहां पर देखते हैं कि दूमा क्या है। यह एक प्रतीकात्मक शब्द है जिसे यशाया शब्दों में प्रयोग द्वारा गहरा अर्थ प्रकट करता है। यह हम निश्चय ही देख चुके हैं कि उसने शब्दों के प्रयोग द्वारा जनता को संदेश दिया था। दूमा वास्तव में एदोम है। दूमा का अर्थ है मूक हो जाना। मूक शब्द यशाया के अभिप्राय के अत्यधिक निकट है। एदोम आज भी मृत्यु के समान मौन की अवस्था में है। अब हम आगे देखते हैं सेर। सेर का अर्थ है बालों वाला। एसाव पहला सेर था जिसे हम उत्पत्ति की पुस्तक 25 अध्याय उसके 25 पद में पढ़ते हैं। वह पर्वत सेर में निवास कर रहा था। इसे हम उत्पत्ति 36 उसके 8 पद में देखते हैं। सेर का दूसरा अर्थ है आंधी। उस क्षेत्र में आंधियां बहुत चलती थी। मौन और आंधी। मित्रों, यह शब्दों का कैसा खेल है, यह कैसा संदेश है। एदोम ही वह नगर था। आंधी और मौन के नगर से जानकारी ली गई। यह दो बार पूछा गया है, हे पहरवे रात का क्या समाचार है। दूसरे शब्दों में अभी रात कितनी और बाकी है, परमेश्वर की महिमा के प्रकट होने में कितना समय है। मलाकी की पुस्तक 4 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। तब हम यशाया 21 अध्याय के 12 पद में पढ़ते हैं, पहरवे ने कहा, भोर होती है और रात भी, यदि तुम पूछना चाहते हो तो पूछो, फिर लौट कर आना। प्रभात और रात दोनों का आगमन हो रहा है। कुछ के लिए तो महिमा का कारण है, वह दूसरों के लिए दुख का कारण होगा। परमेश्वर की प्रजा के लिए जो सूर्योदय है वह एदोम के लिए सूर्यास्त है। एदोमी सांसारिक मनुष्य थे जिन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया था। मेरे मित्रों, अब हम आगे देखते हैं कि अरब के दंड की घोषणा। यशाया की पुस्तक 21 अध्याय के 13 पद में लिखा है, अरब के विरुद्ध भारी वचन, हे ददानी बटोहियों, तुमको अरब के जंगल में रात बितानी पड़ेगी। यद्यपि अरब स्पष्ट है, परंतु इसके भी दो अर्थ हैं। यदि इसके स्वरों में कुछ परिवर्तन कर दिया जाए तो इसका अर्थ संध्या होता है। मेरे मित्रों, इब्रानी भाषा में स्वर लिखे नहीं जाते हैं। स्वरों को केवल व्यंजनों द्वारा अंकित किया जाता है। विद्वानों ने इब्रानी शब्दों में व्यंजन जोड़ दिए हैं कि पढ़ने में आसानी हो। इस पद का अर्थ स्पष्ट है, अरब के इतिहास की संध्या आरंभ हो गई थी या उनकी गणना से कुछ विलंब का समय था। अरब इस्माइल वंशियों अर्थात बद्दू जाति का देश था जो आज का अरब कहलाता है। यह एक विचित्र बात है कि परमेश्वर उनके बारे में भी चर्चा करता है। अब्राहम के पुत्र इस्माइल और इसहाक में अच्छे संबंध नहीं थे। उनके वंशज आज भी अच्छे संबंधों में नहीं हैं। वे आज भी एक दूसरे के कट्टर बैरी हैं। यदि अब्राहम देखे कि आज क्या हो रहा है तो वह अपने पाप को छोटा नहीं कहेगा। मेरे मित्रों, पाप मनुष्य के इतिहास में अपना काम करना नहीं त्यागता है। यशाया 21 अध्याय उसके 14 से 16 पद में हम पढ़ते हैं, हे तेमा देश के रहने वालों, प्यासे के पास जल लाओ और रोटी लेकर भागने वालों से मिलने के लिए जाओ, क्योंकि वे तलवारों के सामने से वरन नंगी तलवार से और ताने हुए धनुष से और घोर युद्ध से भागे हैं, क्योंकि प्रभु ने मुझसे यूं कहा है, मजदूर के वर्षों के अनुसार एक ही वर्ष में केदार का सारा वैभव मिटाया जाएगा। इस देश और इस देश के निवासियों को परमेश्वर दंड देगा। काव्य सौंदर्य और मन के दुख का यह अध्याय दुख के साथ ही समाप्त ना हो। अभी संध्या दिखाई देती है, परंतु परमेश्वर के दिन का उल्लेख भी किया गया है। मेरे प्रियो, संध्या और प्रभात, इसे हम उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय उसके 5 पद में पढ़ते हैं, सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। भोर होने को है, विलाप की रात का शीघ्र ही अंत होगा और एक नए दिन का आरंभ होगा। मनुष्य के पाप और अंधकार की संध्या चली जाएगी और धार्मिकता के पुत्र के आगमन पर परमेश्वर की भोर होगी। मेरे प्रियो, यहां पर अध्याय 21 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 22 में हम देखेंगे, जिसका विषय है दर्शन की तराई, यरूशलेम के विषय भारी वचन, शेबना और एलियाकीम का इतिहास। यह वचन यरूशलेम के संदर्भ में है, जैसा कि हम अपने अध्ययन में देखेंगे। परमेश्वर का भारी वचन बेबीलोन से आरंभ हुआ है और धीरे धीरे यरूशलेम के निकट आता जा रहा है। अब आंधी पूर्ण वेग से पवित्र नगरी पर आती है। आइए हम देखें यरूशलेम के विषय भारी वचन। यशाया के पुस्तक 22 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, दर्शन की तराई के विषय भारी वचन, तुम्हें क्या हुआ कि तुम सब के सब छतों पर चढ़ गए हो। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, दर्शन की तराई यरूशलेम है, जैसा पद 4, 8, 9 और 10 से प्रकट होता है। यशाया की यह अभिव्यक्ति दर्शन की तराई भी विरोधाभासी है। दर्शन का पर्वत तो समझ में आता है, क्योंकि पर्वत पर से दूर दूर तक दिखाई देता है। मूसा ने नीबो पर्वत पर खड़े होकर प्रतिज्ञा के देश को देखा था। हमारे प्रभु यीशु ने जैतून के पर्वत पर से यरूशलेम को देखा था। धर्मशास्त्र में तराई शब्द दुख, विनम्रता और मृत्यु का सा प्रतीक है, क्योंकि यहां दर्शन दुख एवं भावी युद्ध का है, इसलिए इस दर्शन के लिए तराई उचित स्थान है। मेरे प्रियो, जिज्ञासा और भय के कारण मनुष्य घर की छतों पर चढ़कर आने वाले संकट के बारे में जानना चाहते थे। यशाया 36 अध्याय 37 में यरूशलेम असुरों द्वारा घेर लिया गया है। प्रभु यीशु ने चेतावनी दी है कि जब फिर से वे घेराव हो तो वे छत से उतरकर भाग जाएं। इसे हम मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 16 और 17 पद में भी देखते हैं। आगे हम पढ़ते हैं यशाया 22 अध्याय के 4 पद में, इस कारण मैंने कहा, मेरी ओर से मुंह फेर लो कि मैं विलक विलक कर रोऊं, मेरे नगर का सत्यानाश होने के शोक में मुझे शांति देने का यत्न मत करो। मेरे नगर अर्थात इसराइल। यशाया 22 अध्याय उसके 9 और 10 पद में हम आगे पढ़ते हैं, और तूने दाऊदपुर के शहरपनाह की दरारों को देखा कि वे बहुत हैं, और तूने निचले पोखरे के जल को इकट्ठा किया, और यरूशलेम के घरों को गिनकर शहरपनाह दृढ़ करने के लिए घरों को ढा दिया। दूसरा इतिहास की पुस्तक अध्याय 32 में हम देखेंगे कि राजा हिजकिय्याह ने अपने नगर की सुरक्षा के लिए सब कुछ किया। उसने जल के सोते के चारों ओर दीवार बनाई थी कि नगर के लिए जल की समाप्ति ना हो। वह आज भी वहां पाया जाता है। यह अंश भविष्य का है। डॉक्टर एफ सी जेनिंगसन ने कहा, इतिहास यरूशलेम के बचाव के कारण समाप्त हो गया था। भविष्यवाणी के अनुसार वह घेरा गया था, अतः इतिहास में इसकी पूर्ति नहीं है। मेरे प्रियो, भविष्यवक्ता के विचार में यह घेराव और बैरी कौन है? फारस का नाम तो स्पष्ट है, परंतु फारस के राज्य के समय यरूशलेम खंडहर था। अतः स्पष्ट है कि यरूशलेम के बैरी हमारे सामने इसी अध्याय में हैं, अश्शूर, जिन्होंने यरूशलेम को घेरे हुए था, परंतु उसमें प्रवेश वे न कर पाए। अंतिम बैरी भी उत्तर दिशा से आएगा, परंतु वह भी नगर को ले नहीं पाएगा। इन दोनों बैरियों के बीच के समय में इस नगर को सबसे अधिक ध्वंस किया गया है। यह यरूशलेम के विषय में भारी वचन है, और यही वचन हमें यशाया के द्वारा दिया गया है। मेरे मित्रों, हम यहां पर देख रहे हैं कि परमेश्वर अलग अलग नगर के विनाश के बारे में भविष्यवाणी अपने दास के द्वारा से दे रहा है। आज मेरे और आपके जीवन की भी भविष्यवाणी इसी प्रकार से है कि यदि हम उसके निकटता में नहीं आते हैं, अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करते हैं, उसको अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं, तो निश्चय ही मेरा और आपका भी विनाश होगा, क्योंकि उसने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु को इस जगत में इसलिए भेजा ताकि वह मेरे लिए, आपके लिए, सारे जगत के लिए, सारे जगत के पापों के लिए बलिदान हो, क्रूस पर चढ़ाया और मारा गया। उसने अपने पवित्र लहू को बहाया ताकि उसमें विश्वास के द्वारा हम उद्धार को प्राप्त करें। मेरे मित्रों, आज यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, लेकिन आइए आज इस वचन के प्रकाशन के द्वारा हम भी अपने जीवन को नाश होने से बचा लें, ताकि हम उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सके जिसे परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए ठहराया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
मेरे मसीह ने मुझको बचाया, उसका धन्यवाद। मेरे मसीह ने मुझको बचाया, उसका धन्यवाद।